नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। अगले साल के बजट में अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को बजट पेश करेंगी। आने वाले बजट में भारतीय रेलवे के लिए कई बड़ी घोषणाएं की जा सकती हैं। अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अगले बजट में रेलवे के लिए 35 हाइड्रोजन ईंधन वाली ट्रेनों को शुरू करने का प्लान, 400 से 500 वंदे भारत ट्रेनें, लगभग 4000 नए डिजाइन वाले ऑटोमोबाइल करियर कोच और करीब 58000 वेगन शामिल करने का ऐलान किया जा सकता है। इन सभी को अगले 3 सालों में पटरियों पर उतारा जा सकता है। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया कि बजट में भारतीय रेलवे को 1.9 लाख करोड़ रुपए फंड के तौर पर दिए जा सकते हैं। इसके जरिए भारत सरकार रेलवे में अपने रोलिंग स्टॉक, ट्रेन कोच और वैगन के मॉडर्नाइजेशन, रेलवे ट्रैक्स के सुधार और विद्युतीकरण और 2030 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन के टारगेट को हासिल करने चाहती है। सूत्रों ने बताया कि बजट में रोलिंग स्टॉक प्रोग्राम के लिए जो घोषणा होने की उम्मीद है वह 3 साल में पूरी की जाएगी। इसके लिए करीब 2.7 लाख करोड़ रुपए दिए जाएंगे, जो अभी तक के बजट्स में सबसे ज्यादा होंगे। सूत्रों ने यह भी बताया कि बजट में न्यू एज रोलिंग स्टॉक के अलावा 100 विस्टाडोम कोच बनाने का प्लान और प्रीमियर ट्रेनों के 1000 कोचों का नवीनीकरण को भी प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा। जेएसडब्ल्यू एनर्जी ने बृहस्पतिवार को कहा कि उसकी इकाई जेएसडब्ल्यू रिन्यू एनर्जी 5 को सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया SECI से बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली से संबंधित 2 परियोजनाएं मिली हैं। कंपनी ने एक बयान में कहा कि इसके तहत कंपनी को 12 साल तक प्रति माह 10.8 लाख रुपए प्रति मेगावाट का निश्चित क्षमता शुल्क मिलेगा। इन परियोजनाओं की कुल क्षमता 500 मेगावाट 1000 मेगावाट है। कंपनी ने बताया कि 500 मेगावाट 1000 मेगावाट की ऊर्जा भंडारण प्रणाली का मतलब है कि 500 मेगावाट की बैटरी 2 घंटे तक पावर बैकअप दे सकती है। इस तरह इससे कुल 1000 मेगावाट का उत्पादन होता है। केंद्र सरकार नई इनकम टैक्स व्यवस्था पर विचार कर रही है। इसके तहत लोअर मिडिल क्लास को कुछ रियायत मिल सकती है। सरकार वर्तमान टैक्स व्यवस्था को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए नए टैक्स स्लैब ला सकती है। हालांकि इस कदम पर अंतिम निर्णय प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा लिया जाना है। 1 फरवरी को आम बजट पेश होगा, जो मोदी सरकार 2.0 का आखिरी पूर्ण बजट होगा। नागरिकों के लिए इनकम टैक्स दाखिल करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के इरादे से बजट 2020 में सरकार द्वारा वैकल्पिक आयकर व्यवस्था पेश की गई थी। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार एक सरकारी सूत्र ने कहा, नई आयकर व्यवस्था में छूट और टैक्स कटौती की अनुमति देना इसे और जटिल बना देगा और योजना शुरू करते समय ये इरादा नहीं था। वर्तमान में नागरिकों के पास या तो कोई पुरानी आयकर व्यवस्था या नई व्यवस्था को चुनने का विकल्प है। हालांकि ये देखने के लिए कोई डेटाबेस नहीं है कि कितने लोगों ने नई आयकर व्यवस्था का विकल्प चुना। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने बताया कि 10 लाख रुपए से अधिक कमाने वाले लोगों में शायद ही कोई नई व्यवस्था को चुनने वाला है। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शॉल्ट्स ने कहा कि यूरोप अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए खुला है और वह भारत तथा कुछ दूसरे देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौता FTA करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। गौरतलब है कि यूरोपीय संघ ने पिछले साल भारत के साथ एक FTA के लिए फिर से बातचीत शुरू की है। इसके अलावा दोनों पक्षों के बीच एक निवेश संरक्षण समझौते और भौगोलिक संकेतों GI पर एक समझौते के लिए अलग से बातचीत चल रही है। यूरोपीय संघ के भीतर जर्मनी भारत के सबसे बड़े व्यापार भागीदारों में से एक है। विश्व आर्थिक मंच WEF की वार्षिक बैठक 2023 में यहां बुधवार शाम को एक विशेष संबोधन में चांसलर ने कहा, हमने कनाडा, कोरिया, जापान, न्यूजीलैंड और चिली के साथ मुक्त व्यापार समझौतों पर सफलतापूर्वक बातचीत की है। मैं ये सुनिश्चित करने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं कि जल्द ही इसमें नए देश शामिल हो, भारत, इंडोनेशिया और कुछ दक्षिण अमेरिकी देश। उन्होंने कहा, हम भारत के साथ औद्योगिक क्षेत्र के लिए एक टैरिफ समझौते पर चर्चा करने के लिए भी तैयार हैं। यूरोपीय संघ भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। वर्ष 2021 में कुल भारतीय व्यापार में इसकी लगभग 11% हिस्सेदारी थी। दूसरी ओर भारत यूरोपीय संघ का 10वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। शॉल्ट्स ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशील अर्थव्यवस्था बनाने की ओर बदलाव इस सदी का सबसे महत्वपूर्ण काम है और रूसी युद्ध के कारण ये प्रक्रिया तेज हुई है। उन्होंने कहा कि युद्ध शुरू होने से कुछ महीने भीतर ही जर्मनी ने रूसी गैस, तेल और कोयले पर अपनी निर्भरता को खत्म कर दिया। उन्होंने कहा, खास तौर से सर्दियों को देखते हुए ऊर्जा की कमी की शुरुआती आशंका निराधार साबित हुई और हमने एशिया, अफ्रीका और अमेरिका के साथ नई साझेदारी की, जिससे हमारी निर्भरता कम हुई। आधुनिक आप्रवासन कानून के बारे में शॉल्स ने कहा, अगर हम एक अग्रणी औद्योगिक राष्ट्र के रूप में प्रतिस्पर्धी बनना चाहते हैं तो हमें अनुभवी चिकित्सकों, योग्य इंजीनियरों और व्यापारियों की जरूरत है। चांसलर ने कहा कि जो लोग मेहनत करने के लिए तैयार हैं, उनका जर्मनी में स्वागत है। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आइए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।